सूरत अल बकरा, बकरा का माना, अच्छा बकरा का भी माना लिख लें, बकरा गाय को कहते हैं। और ये नाम जो सूरतों के हैं ना, ये भी खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं रखे या बाद में नहीं रखे गए, बल्कि ये भी अल्लाह ताला ने बताए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे थे। और ज़रूरी नहीं होता कि कोई नाम है तो उसका मतलब ये है कि इस सूरत का जो थीम है वो इसके नाम में है, या इस सूरत का जो मेन कोई आइडिया है वो उस नाम, उसके ऊपर इसका नाम रखा गया है, ऐसे ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, सूरत का नाम कोई उसमें लफ्ज़ आए तो उसके ऊपर भी रखा जा सकता है, या ये भी हो सकता है कि उस सूरत के स्टार्ट में जो वर्ड आता है उससे उसका नाम रख दिया जाए, ऐसे भी सूरतें हैं। इसी तरह सूरत में कोई किसी पर्सनालिटी का के गिर्द रिवॉल्व करती है तो उसका नाम भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उस सूरत में वो ही उसका मेन टॉपिक हो तो उस पर भी रखा जा सकता है। तो ये सारी वजूहात हो सकती है, मगर ये ना समझिएगा कि सूरत क्योंकि यही मतलब इसका थीम है तो इसलिए ये इसका नाम है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा जो मैंने आपको आज इसकी सूरत की बरकात बताई है, इसके बाद कोई आपको शौक पैदा हुआ है कि हम इस सूरत को सीखें? कोई शौक पैदा हुआ, सीखना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, इसकी इतनी बरकतें हासिल करना चाहेंगे? अगर सिर्फ दो ही बातें आप याद रखें ना, कि दुनिया में शैतान हमारे घर में दाखिल नहीं होगा अगर हम इस सूरत को सीखेंगे, इसको पढ़ेंगे और इसको याद रखेंगे, और दूसरी चीज़ के कयामत के दिन हमारे लिए सिफारिश करेगी या हमारे लिए साहिबान बनेगी, हमारे लिए नूर बनेगी, तो ये दो बातें भी अगर आप याद रखेंगे ना, तो मेरे ख्याल में आपको कभी आप इसको छोड़ने को पसंद नहीं करेंगे। अल्लाह ताला इसका सीखना हमारे लिए आसान फरमा दे, और अल्लाह ताला इसके ऊपर अमल करना हमारे लिए आसान फरमा दे। पता है आपको, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने इस सूरत को हिफ्ज़ किया था और इसको सीखा था कितने साल में? 12 ईयर्स में, 12 साल में। क्यों? इसलिए कि इस सूरत में इतने मज़ामीन हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं, और उन लोगों ने सिर्फ ऐसे ही याद नहीं करना होता था, सिर्फ ऐसे ही वो सीखते नहीं थे जैसे हम सीखते हैं, उन्होंने इसको साथ अप्लाई करना होता था, अमल भी करना होता था ना। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने इसको 8 साल में हिफ्ज किया था, क्योंकि वो हिफ्ज, उनका हिफ्ज सिर्फ रट्टे मारना नहीं होता था, उनका हिफ्ज ये होता था कि इसको साथ साथ अमल में लाया जाए। ठीक है, अच्छा अब आप पिछली सूरत के साथ इस सूरत की कंटिन्यूएशन देखें। पिछली सूरत का थीम क्या था? अगर आपको एक लाइन में पूछा जाए पिछली सूरत की समरी या उसका थीम या उसका मेन पॉइंट क्या है, तो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप लोग? उसका मेन पॉइंट है, थीम है, या जिसके गिर्द वो सूरत रिवॉल्व कर रही है, या उसका क्लाइमेक्स कह लें, वो है इहदीनस्सिरातल्मुस्तकीम, इहदीना, ए हमारे रब हमें हिदायत दे दे सिरात मुस्तकीम की, ए अल्लाह सीधे रास्ते की हिदायत दे दे, सीधे रास्ते को सिर्फ दिखाई नहीं दे, ए अल्लाह सीधे दे रास्ते पर चला भी दे, ले के हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के या अल्लाह चला भी देना और मंजिल तक पहुंचा देना, मरते दम तक हम वहां रहें, चलते रहें इस रास्ते पर और मंजिल तक पहुंच जाएं, मंजिल तक पहुंचा के आना हमें, अल्लाह हमें बीच में ना छोड़ देना। समझे ना बात को? उसको अब उस आयत को खोल के अगर बयान किया जाए तो ये मतलब बनता है ना उसका। जब आपने अल्लाह ताला से बड़ी सोच से गिड़गिड़ा के ये दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे दिखा दे ये रास्ता ना, तो अब अल्लाह ताला ने इसी दुआ को कबूल फरमाया और आपको वो रास्ता दिखा दिया, जिस रास्ते की आपने दुआ मांगी कि अल्लाह अनअमता अलैहिम का रास्ता बता देना, ए अल्लाह वो सिराते मुस्तकीम बता देना जिस पे नेक लोग चले थे, ए अल्लाह वो रास्ता हमें दिखा दे। अच्छा अब ठीक है, ये लो फिर वो रास्ता, वो रास्ता क्या है? ये सूरह बकरा। इसका जवाब है आपकी दुआ का। और अगर आपने वाकई दिल से ये दुआ मांगी थी तो अल्लाह ताला ने दिखा दिया आपको राह। और दुआ करते रहेंगे तो अल्लाह ताला चला भी देगा, और मुसलसल दिल से ये दुआ करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मंजिल तक भी पहुंचा देगा। और इस रास्ते को की बार बार याद दहानी करते रहेंगे। अच्छा, आप आजकल GPS वगैरह होते हैं आप, और ये इंटरनेट से भी डायरेक्शंस मिल जाती हैं। अब आप घर से भी डायरेक्शन लिख के पेपर पे और फिर जा सकते थे, लेकिन आप GPS रखते हैं। क्यों? इसलिए कि वो हर तरफ आपको बताता है, इधर मुड़ जाएं, इधर मुड़ जाएं, इधर चले जाएं, आप सीधे जाएं, बस इतना चलें, अब फौरन राइट ले लें, अब इतना चलें उसके बाद लेफ्ट ले लें, है ना। तो हालांकि आप तो घर से डायरेक्शन पेपर पे लिख के जा सकते थे, मगर आपको हर स्टेप पे ज़रूरत है, हर स्टेप पे ज़रूरत है कि कोई आपको बताए यहाँ से मुड़ जाओ, नहीं बस बस आगे नहीं जाना, बस इधर से ही टर्न ले लो, इधर सीधे जाओ, इधर मुड़ो, इधर जाओ, इधर मुड़ो, आपको हर स्टेप पे ज़रूरत होती है। तो ये कुरान जो है ये वो हिदायत का नुस्खा है, ये वो हिदायत है जो आपको हर मोड़ पे जिंदगी के डायरेक्ट करेगा, रहनुमाई करेगा, गाइड करेगा, बस सीधे, बस यहां तक, बस यहां से मुड़ जाओ, इधर से आगे नहीं, इधर जाओ, हर जगह पे आपको गाइड करेगा। तो इसको साथ रखेंगे तो इंशाअल्लाह वो ताला ये आपको मंजिल तक भी पहुंचा देगा, जन्नत तक भी पहुंचा देगा। और इसको बीच में छोड़ दिया, अब आप GPS बीच में ही बंद कर दें और कहीं आगे मैं खुद ही चलती जाऊंगी तो हो सकता है आप ना पहुंच सके। इसको साथ रखना है आखिर दम तक, मरते दम तक, कि आपको गाइड करता रहे, करता रहे, करता रहे और मंजिल तक पहुंचा के आए। मगर ये आपको बताता रहेगा, आपको गाड़ी तो खुद चलानी है ना, ये तो नहीं कि गाड़ी भी कोई GPS ही चला दे। तो ये कुरान आपको बताता रहेगा, आगे अमल आपने खुद करना है। और आप इसको नहीं फॉलो करेंगे, ये आपको कहता रहेगा कि ये करो, ये करो, ये ना करो, और आप ना अमल करें तो वो आपकी मर्जी है। ये इसने अपना काम ज़रूर कर दिया। और हिदायत किससे मिलके बनती है? इल्म और अमल दोनों से मिलके हिदायत बनती है, सिर्फ इल्म हिदायत नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको बताएगा, आगे आप अमल करते रहेंगे तो क्या होगा, आप जन्नत तक इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। अरे इसी की तो हम दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह हमें हिदायत दे 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 दे, इल्म भी दे दे और अमल भी करा ले, ठीक है। तो आपकी ये दुआ सुनी गई, अल्लाह ताला ने आपको अब ये राह दिखा दी है। और आज हम आगाज कर रहे हैं कि कौन सा रास्ता है जो हमारे लिए है ताकि हम इसके ऊपर चल सकें। तो आज हम इसके पहले सीढ़ी पर कदम रख रहे हैं, पहला कदम उठा रहे हैं। और ये कहां से शुरू होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम। अब जैसे मैंने आपको तर्जुमे में बता दिया, अलिफ लाम मीम क्या है, इसका तर्जुमा तो कोई नहीं जानता। अच्छा, फिर अगर नहीं तर्जुमा जानते तो फिर इसकी जरूरत क्या थी? कुरान पाक में तो कोई भी चीज बेकार है ही नहीं है, तो अगर इसके तर्जुमे की जरूरत, हमें तर्जुमा ही नहीं पता तो फिर इसकी जरूरत क्या है, ये बताएं। बात यह है कि तुम आए हो ना अल्लाह की किताब की तरफ, तो अल्लाह ताला ने सबसे पहली बात ही जो तुम्हें सिखा दी वो ये है कि अलिफ लाम मीम, यानी तुम अब इस किताब की तरफ आए हो तो याद रखना अलिफ लाम मीम, चूंकि तुम्हें इसका तर्जुमा नहीं आता तो जहन में रखना ये बात, ऐसे अल्फाज से ये किताब शुरू हुई है जिनकी तुम्हें समझ नहीं आ रही। इससे क्या पता चलता है? क्या पता चलता है कि तुम ये बात जहन में ना रख के आना कि हमें तो बड़ा कुछ पता है, मैं तो बहुत कुछ जानती हूं, मुझे तो ऑलरेडी ये पता, मुझे तो ऑलरेडी वो पता। नहीं, कुरान शुरू ही हो रहा है तो आप इस बात का इतराफ करें, एक्सेप्ट दिस कि आपको कोई इल्म नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है। इतनी जबरदस्त बात है ना ये, एक्सेप्ट इट, पहली आयत पे ही एक्सेप्ट करें, पहले आप ये बात माने कि मुझे नहीं पता, और पता है तो बताएं इसका मतलब क्या है। कुरान पाक में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो बेकार ऐसे ही आ गई है, अलिफ लाम मीम ऐसे ही लिख दिया गया, नो, इसकी हर लफ्ज, हर हर्फ, हर बात, इसमें कोई माना है। लेकिन बात यह है कि मुझे आपको पता ही नहीं है, दौड़ाएं अपने अकल के घोड़े, ये फलाना हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, सब स्पेकुलेशंस हैं। एक्सेप्ट इट नाउ, आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि आगे जानने से पहले ये मानना जरूरी है, यही आजी होनी चाहिए, अल्लाह मैं बेइल्म हूँ, अल्लाह मैं कुछ नहीं जानती। प्रायर नॉलेज को जो है ना एक साइड पे रख के आए, ये नहीं कि हमें बहुत पता है, हमने तो बहुत किताबें पढ़ी हुई हैं, मैं तो बहुत जानती हूँ, नो, इस जहन के साथ आओगे तो कुछ सीख नहीं सकोगे। एक्सेप्ट इट नाउ, पहली आयत पे एक्सेप्ट करो, उसके बाद आगे बात बताई जाएगी। सुभान अल्लाह, कितना कितना अप्रिशिएट करे ना इंसान कुरान को, सुभान अल्लाह। कितनी दफ़ा आपने अलिफ लाम मीम पढ़ा होगा, लेकिन क्या इस तरह से सोचा कि यहीं पे मैं हार मानूं, पहले यहीं पे हार मानूं, सबसे पहले मैंने अपने आप को झुका दिया, ऐ मेरे रब, मैं इल्म लेने आई हूँ, मैं सीखने आई हूँ, मैं रहनुमाई चाहती हूँ, मुझे खुद कुछ भी नहीं पता, मैं ब्लाइंड हूँ। सुभान अल्लाह। और ये भी पता चलता है ना कि अल्लाह ताला के इल्म के अपने ख़जाने हैं, जिनमें एक अलिफ लाम मीम भी है, उसके इल्म के ख़जानों में से है ये, और अल्लाह ताला अपने इल्म के ख़जानों में से जो बात रिवील करना चाहे, जाहिर करना चाहे वो जाहिर कर दे, और जो छुपाना चाहे वो, जो ना बताना चाहे ना बताए। अलिफ लाम मीम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर किताब की एक सीक्रेट होती है, और अलिफ लाम मीम अल्लाह का राज है, अल्लाह की सीक्रेट है। इमाम शाबी जो है वो एक ताबई हैं, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं, वो फरमाते हैं कि ये अल्लाह की सीक्रेट है, तुम इसके पीछे ना पढ़ो कि ये होगा वो होगा, अलिफ लाम मीम का माना नहीं, कोई भी नहीं जानता इसका माना। इसको कहते हैं हरूफ मुकत्तआत, जो ब्रेक करके पढ़ने होते हैं ना, तोड़ तोड़ के पढ़ने होते हैं, यह हरूफ मुकत्तआत नहीं है, मुकत्तआत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि अलिफ लाम और मीम, अलिफ के ऊपर 10 नेकी, लाम पे 10 नेकी, मीम पे 10 नेकी, क्यों ये फरमाया, यही एग्जांपल क्यों दी, ये क्यों नहीं फरमाया दालिका, दाल पे 10 नेकी, लाम पे 10 नेकी, काफ पे 10 नेकी, क्यों सोचा आपने कभी? क्योंकि दालिका का तो कोई माना बनता है, अलिफ लाम मीम का तो हमें कोई माना ही नहीं पता, तो ये बताना मकसूद है कि किसी को माना नहीं भी समझ आया तो तब भी वो अगर पढ़ेगा इस कुरान को तो तब ही अजर पाएगा, सवाब उसको मिलेगा, समझे। फिर अगली बात एक और समझे कि कुफार को ये चैलेंज है कि तुम कहते हो ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुद ही घर लिया है और ये है, तो तुम तो ये हरूफ रोज बोलते हो, तुम क्यों नहीं बता देते कि इसका माना क्या है, या तुम क्यों नहीं ऐसा कलाम बना के ले आते, ले आओ ना ऐसा कलाम, तुम अलिफ लाम मीम ऐसे हरूफ तो तुम भी जानते हो, तुम कोई लाओ, इन्हीं इन्हीं हरूफ से बनाए ये कलाम भी, ये एक चैलेंज है सबके लिए। और अलिफ लाम मीम में देखें, ये भी कहा गया कि ये इस कुरान का नाम है अलिफ लाम मीम, क्योंकि आगे इसी की बात हो रही है, दालिकल किताब। और ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अलिफ लाम मीम, तो ये तो लेटर्स है ना, ये तो उसी को पता होते हैं जो पढ़ना लिखना जानता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं जानते थे, इसका मतलब क्या है कि ये कलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं बनाया, ये अल्लाह की तरफ से है, किसी और ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया है, किसी और ने बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं बना के ला सकते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये लेटर्स मालूम ही नहीं थे, ठीक है। और अरब में वैसे एक वो भी था तरीका कि वो इस तरह से लेटर्स बोल के मुतवज्जे भी करते थे। चले आगे देखते हैं। ज़ालिकल किताबु, ज़ालिक ये, अल किताब ये स्पेसिफिक किताब, ला रोइबा फी, आप यहां पे भी वक्फ कर सकते हैं। ये देखो तीन नुक्ते हैं ना, फी ही से पहले और फी ही के बाद, थ्री थ्री डॉट्स लगे हुए। तो इन डॉट्स का मतलब क्या होता है कि आप ला रईब पे भी वक्फ कर सकते हैं और उसके बाद पढ़ें फी ही हुदल लिल मुत्तकीन, या फिर आप ये भी पढ़ सकते हैं दालिकल किताबु ला रईबा फी और आगे यहाँ पे वक्फ करें और फिर हुदल लिल मुत्तकीन पढ़ें। ठीक है, तो पहले हम ये पढ़ते हैं, दालिकल किताबु ला रईबा फी, ये किताब है इसमें कोई शक नहीं है। तुम हिदायत मांग रहे थे ना, लो हिदायत की किताब, लो हिदायत तुम्हें मिल गई। लेकिन ये सोच के इसकी तरफ आना कि इसमें इतना सा भी शक नहीं है, नॉट इवन अ पॉसिबिलिटी, ये तुम्हारे जहन से कभी ये 1% भी कोई शक की बात ना गुजरे। किस चीज में शक, ये पता नहीं ये अल्लाह की तरफ से है भी या नहीं। कभी हो सकता है ना जहन के अंदर ये बात किसी के आ जाए कि पता नहीं अल्लाह की तरफ से है या नहीं है। या आप इसको आगे पढ़ें तो जहन में आए पता नहीं ये है हुक्म अल्लाह की तरफ से आया भी था कि नहीं आया था, पता नहीं इस बात सही भी है कि नहीं है। नो नो नो, रईब भी ना आए, रईब भी ना आए, समझे? वो तो दूर की बात है कि आप यानी एक कोई कोई बड़ी बात का डाउट करना या वो तो दूर की बात है। सिर्फ 1% जो शक होता है ना, इतना सा भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि रईब मैंने आपको बताया वो छोटा माइन्यूट सा, एक बस सेहन से एक वहम सा गुजरा, नहीं वो भी नहीं आना चाहिए। उसको भी निकाल के इसकी तरफ आना, इस कलाम की तरफ। पहले दिन ही ये बात अच्छी तरह से समझ जाओ कि इसमें शक नहीं है, यकीनी, हर बात इसमें इतनी यकीनी है, अटल है। और ये दुनिया की एक किताब है, वाहिद किताब है जो ये दावा लेके उठी है कि इसमें कोई शक नहीं है। आपको पता है जितनी आसमानी किताबें आई हैं ना, उनके अंदर भी ये दावा कहीं पे मौजूद नहीं है, और इंसानी किताबों में तो है ही नहीं। आप देखते हैं हर जो ये कितनी किताबें आपके सामने आएंगी, उनमें ऑथर्स ने क्या लिखा होता है शुरू में, गुजारिश हाथ में क्या लिखा होता है, इसमें कोई अगर गलती पाई जाए, इसलाह की गुंजाइश है इसके अंदर, आप हमें बताएं। फिर कई उसके नए नए एडिशन आते रहते हैं, अभी ये इसका लेटेस्ट एडिशन ये है, उसमें जो पिछले में गलतियां होती हैं वो अगले में सही करते हैं, फिर उससे उसमें गलतियां होती फिर अगले में, फिर भी वो कहते हैं इसलाह की गुंजाइश है, आप हमारी आप उस तरफ निशानदेही करें अगर आपको कोई इसमें गलती नजर आती है, इसलाह फरमाइए, ऐसी बातें लिखी होती है ना। ये किताब सुभान अल्लाह शुरू ही हो रही है तो इतना बड़ा ये दावा है, इसमें कोई शक नहीं। कोई इंसान ये दावा अपने किसी किताब किसी कलाम के लिए कर ही नहीं सकता। इलामा इकबाल कहते हैं, कितने बड़े फिलोसोफर थे, अपने लेक्चर की तमहीद में लिखते हैं कि मैं ये नहीं कह सकता कि जो कुछ मैंने कहा वो सब सही है, हो सकता है जैसे जैसे इल्म आगे बढ़े मजीद नई नई बातें सामने आए। साइंस को देखें, हर नई दिन नई उनको डिस्कवरीज होती हैं, और वो कहते हैं वो अच्छा जो पुरानी बात थी ना अब वो नहीं सही, अब नई ये बात आई। एक दिन आपको पता चला है ये चीज खाने में बहुत नुकसान है, अगले दिन पता चलता है नहीं, वो वाला आप पता चला है अब नुकसान नहीं है अब फायदा है। तो नहीं से नहीं बातें, इसका मतलब है इनके इल्म जो है वो नाकिस है। वो अलीम जात जो ये दावा कर सके कि इसमें सेंचुरी सेंचुरीज गुजर चुकी हैं, सुभान अल्लाह, आज तक इसमें कोई ऐसी बात नहीं निकाल सका कि ये बात गलत है। बल्कि साइंस जैसे जैसे चीजें प्रूव कर रही है, यही और ज्यादा बात खुल रही है कि जो कुरान ने इतने अरसे पहले बातें बताई वो सब हक है, और अब पता चल रही है कि वो हक है। तो ये दावा आज का नहीं है, ये 1400 साल पहले और कयामत तक के लिए ये दावा है कि इसमें कोई शक नहीं, कभी किसी को मिलेगा ही नहीं कोई इसमें चीज ऐसी कि ये गलती है इसमें, सुभान अल्लाह। और क्या आया, ला रईबा फी। अगर इसमें आता ना फी ही ला रईब, तो फिर भी हो सकता था कि कोई बात या ला फीही रईब ये कहा जाता तो फिर इतने बड़ा नो का वो नहीं आना था। ये कहा गया ला रईबा फी, इसमें इतनी इन्फोर्समेंट है कि कोई शक की बिल्कुल टोटल नफी कर दी गई। एक तो रईब वर्ड आ गया जिससे पता चला कि 1% भी नहीं कर सकते। एक जो इसकी जुमले की फॉर्मेशन है ना वो बता रही है कि ला ला लाए नफी जिन्स जिसको कहते हैं, कि बिल्कुल टोटल निगेशन वो की गई है यहां पे। नहीं कोई शक, नहीं पहले आया, इसमें कोई शक है ही नहीं। ये इतना बड़ा दावा सिर्फ अल्लाह ताला की जात की तरफ से हो सकता है। कोई इंसान ये जसारत जुर्रत नहीं कर सकता कि अपनी कोई बात लिखे और उसके बाद ये कह दे। तो 4 दिन बाद कोई आ जाएगा, आपने तो ये कहा था कि इसमें कोई ये चीज नहीं गलत, ये देखें कितनी गलतियां। ठीक है, तो अब आप जो फर्स्ट स्टेज पर ये कुरान सीखने के लिए आए हैं तो इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है, अल्लाह ना करे, लेकिन हो सकता है कभी कुरान पाक के किसी मरहले में आके कोई शैतान जहन में ये बात लेकर आए कि ये क्या बात हुई, ये तो आज के लिए एप्लीकेबल नहीं, ये तो नहीं आज हो सकती, इसकी तो नहीं मुझे कुछ समझ आई। तो जब नहीं समझ आए ना तो अपनी अकल को कोसना कि मेरी अकल जो है ना वो नाकिस है, क्योंकि ला रोई बाफी ये याद कर लें, इसमें तो कोई शक है ही नहीं है, इसके कंटेंट्स में कोई शक नहीं, और इसके अल्लाह की तरफ से होने में कोई शक नहीं। दोनों बातें लिख लें, शक किस में नहीं है, अल्लाह की तरफ से होने में नहीं है, नंबर टू इसके कंटेंट्स में कोई शक नहीं है। सुभान अल्लाह। हुदल लिल मुत्तकीन, और ये किस लिए आई है, ये अल किताब है, ये किस लिए आई है, हिदायत है मुत्तकीन के लिए। आज दोबारा जरा अपने से सवाल पूछ लें कि मैं कुरान सीखने के लिए क्यों आई हूं, क्या चाहिए मुझे इससे। उम्मीद है आपने लिखा होगा पहले भी, लेकिन आज दोबारा जरा जहन में लेकर आए कि मेरी इंटेंशन क्या है इस कुरान को सीखने से। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस बुक का पर्पस बता दिया, इस कलाम का पर्पस बताया कि क्या इसका पर्पस है, क्यों अल्लाह ताला ने इसको नाजिल फरमाया। हुदन है ये, हिदायत है, और अब समझ आती है ना हिदायत क्या है, राह दिखाना, रास्ते पे चलाना, मंजिल तक पहुंचाना, ये इसलिए आई है, ये है मकसद इसका। हो सकता है कि कोई इसको मकसद समझता हो कि भाई सवाब मिले इससे, तो क्या यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि ये सवाब पाने के लिए, या हो सकता है कि चलो मेरे घर में बरकत हो जाएगी इसलिए, इसके मकसद में ये भी नहीं लिखा हुआ, या रिस्क रोजी के वजीफों के लिए ये है किताब, इसके मकसद में ये भी नहीं लिखा हुआ, या जिन्नात भगाने के लिए, ये भी इसका मकसद नहीं है, या हिफ्ज करने के लिए है, आयतें याद करने के लिए, ये भी इसका मकसद नहीं लिखा हुआ। ये सेकेंडरी चीजें तो हो सकती हैं, हाँ बरकत होगी इससे, जाहिर है सवाब भी मिलेगा इससे, हिफ्ज भी कर सकते हैं इसको, इसका बहुत अजर है, लेकिन इसका पर्पज ये नहीं है। अल्लाह ताला ने ये हिफ्ज की नहीं किताब उतारी, अल्लाह ताला ने ये सवाब पाने के लिए नहीं उतारी, अल्लाह ताला ने ये रिस्क रोजी में वजीफे करने के लिए नहीं उतारी, इसका मकसद क्या, हुदन हुदन हुदन, ये याद रखिए। असल काम है हिदायत लेना, असल काम है कि आपको ये डायरेक्शन बताए और आप उस डायरेक्शन को फॉलो करें, इसमें हिदायत है। समझ आई बात की, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ रही होगी कि क्या ये बात, थोड़ी आप लोगों की कंसंट्रेशन चाहिए, बहुत डेप्थ है हर हर आयत में। लेकिन देखें, अच्छा अब एक और बात समझे, मैं जितनी मेरी से कोशिश हो सकती है ना, मैं आपको सिंपल सिंपल करना चाहती हूँ ताकि आपको कोई बोझ ना लगे। ये अगर कोई बोझ लग रही हो ना, मेरी मेरी कोताही होगी इसमें, कुरान पाक का तो नहीं, मेरी कोताही है कि मैं आपको शायद सही से समझा नहीं पाऊँ, लेकिन या मैं आपको इसको बोझल करके दिखा रहा हूँ। कुरान बोझल नहीं है, ये याद रखिए, ये बहुत आसान है, वो मेरे बताने में हो सकता है कोई कमी हो। अच्छा देखें, अब एक बंदा है, उसको एक GPS से उसको रास्ता बताया जा रहा है, लेकिन उस रास्ते को फॉलो कौन करेगा? वो ही फॉलो करेगा जो घूमना नहीं चाहता है ना, जो चाहता है कि मैं सही सही पहुंच जाऊं, भाई फलां के घर मैंने जाना है, तो मैंने GPS किस लिए लगाया होता है कि भाई मैं घूमू ना रास्ते में, है ना, और फिर मैं इतनी केयरफुली उसको फॉलो करती हूँ कि नई जगह है, नया शहर है, मुझे तो पता ही नहीं कहाँ जाना है। ठीक है, अच्छा अगर मुझे ये है, कोई बात नहीं, गुम भी हो जाऊंगी तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे नहीं GPS की जरूरत, या GPS कुछ भी कहता रहे मुझे इससे क्या। अच्छा चलो यहाँ पे भी खड़ी हो जाती हूँ, थोड़ा कुछ खरीदारी कर लूँ, फिर कहीं और खड़ी हो गई, फिर किसी के घर और रुक गई, फिर कहीं और चली गई, चलो ये जरा साइट सीइंग कर लूँ, और GPS कुछ भी कहता रहे इससे क्या फर्क पड़ता है, कभी 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 ना कभी तो पहुंच ही जाऊंगी। अगर इस तरह के जहन हो तो फिर तो लॉस्ट ही रहेंगे ना, अगर उसको फॉलो ही नहीं करेंगे। तो असल फायदा GPS का कौन उठाता है? जो उसको सही सही फॉलो कर रहा होता है, जो वाकई मंजिल तक पहुंचना चाहता है, राइट? ये बात समझ आई? ये हुदन किसके लिए? ये तो हिदायत दे ही रहा है, कुरान तो बता रहा है ये रास्ता है, ये भाई इस पे चलो, ये अल्लाह की नाराजगी का है, इससे बच जाओ, ये अल्लाह ताला को खुश करने का रास्ता है, इसकी तरफ आ जाओ, ये डायरेक्शन बताएगा, लेकिन इससे फायदा कौन उठाएगा? लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए है हिदायत। अब कौन लोग हैं मुत्तकी? मैंने आपको बताया ना, बचने का मफहूम इसमें आता है, विकाया में क्या है, बचने का मफहूम, तकवा का मतलब क्या होता है, खुद बचना। अब किससे बचना, क्या चीज है जिससे बचना चाहते हैं? बचना गुनाहों से, कि इंसान ये चाहे कि कोई मुझसे ऐसा काम ना हो जाए कि जिससे मेरा अल्लाह नाराज होता हो, जो गुनाह का काम हो, जिससे मुझे सजा भुगतनी पड़े। ठीक है, मैं अपने अल्लाह को राजी करना चाहती हूँ ना, तो मैं उसको खुश करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं स्ट्रेट स्ट्रेट रास्ते पे जाना चाहती हूँ। अगर गुनाह हो गया तो क्या होगा, मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा और मेरा जन्नत का रास्ता जो है वो मेरे से गुम हो जाएगा, क्योंकि फिर जहन्नुम की तरफ मैं चली ना जाऊं। ठीक है, अब यानी तकवा में क्या है, तकवा में एक चीज जो है खुद को बचाना, बचा बचा के चलना, और किस चीज से बचाना, गुनाहों से। यानी जो बंदा गलत नहीं चलना चाहता, जो बंदा खुद को अल्लाह की नाफरमानी से बचाना चाहता है, जो बंदा चाहता है कि सही रास्ते पर चले, उसके लिए ये हिदायत है। समझ आइए, हिदायत किसको कहते हैं, ये समझ आ गई भी है ना, जो इस किताब से ताल्लुक रखेगा ये उसको चलाएगी, हिदायत देगी। मगर बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि अमल करना तो बड़ा मुश्किल है, वो हमसे नहीं होता, तो कुरान सीखने का क्या फायदा? तो ये अगर वो हिदायत का माना समझ जाए ना, हिदायत है सिर्फ राह दिखाना नहीं, रास्ते पे चला भी देना, तो ये इंशाल्लाह कुरान अमल की भी, चलने की भी कुव्वत देगा, आपको ताकत देगा, और फिर आप चल सकेंगे, ये सपोर्ट करेगा आपको, ये थाम के रखेगा आपको। अगर आप इसका साथ नहीं छोड़ेंगे तो ये आपको मंजिल तक पहुंचा के रहेगा। फिर हर एक को क्यों नहीं इससे फायदा पहुंचता? हम कई लोग देखते हैं, हम कहते हैं वो भी कुरान पढ़ा, बड़ा देखे हैं कुरान पढ़ने वाले, वो तो ऐसे होते हैं, वो तो ऐसे होते हैं, उनके अंदर तो ये खराबी है। पर ठीक है, वो इंसान है, खराबी तो हो सकती है किसी से भी, गलती हो सकती है किसी से, लेकिन एक बंदा है, आप देखते हैं कुरान सीखा, पढ़ा, सारा कुछ किया, मगर कुछ भी फर्क नहीं आया, क्यों? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब आपको यहीं से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये कुरान आपको हिदायत दे, आपको राह दिखाए, आपको सपोर्ट दे, आपके अंदर कुव्वत पैदा करे, तो आपको क्या बनना पड़ेगा? मुत्तकी। वो लोग जो कोरे के कोरे रह जाते हैं ना, वजह क्या होती है? वो मुत्तकी नहीं है। आपको पहले तकवा का थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी आपको फायदा होगा। जैसे आप कोई बिजनेस शुरू करने लगते हैं ना, आपके पास थोड़ा सरमाया होता है, उसको लगाते हैं तो फिर आपको मुनाफा मिलता है। आपके पास थोड़ा सा ये दिल में एहसास होना चाहिए कि मैं बुराई से बच जाऊं, मैं बचना चाहती हूं और मैं भलाई पाना चाहती हूं, तभी आपको ये किताब हिदायत देगी। और अगर ये नहीं है, अगर आपको ये एहसास नहीं है कि मैंने खुद को सेव करना है, अब ये इसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम ये बात नहीं हो रही, हर एक के लिए, कोई गैर मुस्लिम भी है, गैर मुस्लिम में भी अगर ये एहसास है ना कि मैंने खुद को बचाना है, मैंने बुराई से बचना है, तो ये किताब उसको गाइड करेगी। वरना आप देखें, कई गैर मुस्लिम है, उन्होंने इस किताब को कई कई दफा पढ़ा है, लेकिन क्या उनको मिला? वो आज यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, यहां पे इस्लाम की तालीम दे रहे हैं, लेकिन ईमान फिर भी नहीं लेकर आए। क्यों? इसलिए कि उन्होंने बस ऐसे ही इसको पढ़ा है, कोई इसलिए नहीं पढ़ा कि मैं, मुझे गाइडेंस चाहिए। एक होता ना, एक बंदे के अंदर तड़प होती है, तलब होती है, हाय मैं किसी तरह बच जाऊं, मैं किसी तरह अजाबों से बच जाऊं, ये ना हो कि मैं गुनाह के रास्ते पे चले जाऊं। मुझे क्या पता, मुझे तो आज तक यही नहीं पता चला नेकी क्या है और बुराई क्या है, और किससे अल्लाह खुश होता है और किससे अल्लाह ताला नाराज होता है। कहीं ये ना हो कि मैं जहन्नम के रास्ते पे हूं, मुझे बचना है, मुझे खुद को बचाना है। ये तड़प जब अंदर होगी ना, ये तलब होगी अंदर, तो फिर ये किताब गाइड करेगी। और अगर जस्ट ऐसे ही विंडो शॉपिंग करनी है, या जस्ट जैसे ग्रोसरी करने गए, ये चीज देखी वो चीज देखी, इसी तरह कोई उठा के एक मजहब देख रहा है, कोई दूसरा मजहब दे रहा है, ओ इसके अंदर ये अच्छी चीज है, ये मुझे पसंद आ गई, और दूसरे के अंदर ये नहीं अच्छी लगी, ये छोड़ दो, इस तरह उठा उठा के पसंद करना, मैं किसको लूं और किसको नहीं, ये इस ऐसे बंदे के लिए नहीं है, उसके लिए जो एक तलब लेके आया, बचने की तलब। इसी तरह अगर कोई मुसलमान भी है, मुसलमान को भी तभी हिदायत मिलेगी जब वो उसके अंदर तकवा होगा, कि ये नहीं है कि बस जो जिस तरफ लोग जा रहे हैं बस उसी तरफ मैं भी चलती जा रही हूं, या जो लोग कर रहे हैं बस मैंने भी वही करना है, चलो तुम उधर को हवा हो, जिधर की जिधर जिधर जमाना जा रहा है उधर चलते चले जाए, जिधर ख्वाहिश धकेल रही है उधर को मुड़ते चले जाए, जिधर कदम उठ गए बस चल दिए। ऐसे लोगों के लिए कुरान कोई गाइड नहीं दे बनेगा। वो गाइडेंस तो उसके लिए ना, अगर आप वाकई चाहते हैं मैं बुराई से बचूं, तो ये जहन लेकर पहले कुरान की तरफ आइए। क्या आपके अंदर ये जुस्तजू? इसीलिए मैंने आपसे अभी पूछा है, आप कुरान सीखने क्यों आई हैं? क्यों आई हैं? अगर आपको ये है इसका जवाब कि मैं बुराई से बचना चाहती हूं, मैं भलाई की तलबगार हूं, मैं वैसे जीना चाहती हूं जैसे मेरा रब मेरे लिए पसंद करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आप सही चीज की तरफ आई हैं, कुरान आपको गाइड करेगा। और अगर आपने इस तरफ से अपना माइंड बंद किया हुआ और आपने सोचा ये हुआ कि मैं तो वही करूंगी जो मेरा जी चाहेगा, आप कुरान जो मर्जी कहता रहे, आप पढ़ लूंगी सीख लूंगी उसको, क्योंकि आखिर पता तो चले है क्या इसमें, क्योंकि लोग जब बात करते हैं तो मुझे फिर जवाब नहीं आता, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या जवाब दूं, मेरे बच्चे सवाल करते हैं मुझे समझ नहीं आती क्या जवाब दूं, तो फिर आपको क्या ये गाइड करेगा? फिर आपको हाँ जवाब तो आ जाएंगे, रट लेना फिर आयतें या आयतों के नंबर, या फलां सूरत वहां उतरी और फलां सूरत वहां उतरी, वो बस फिर आपको जवाब देने तो आ जाएंगे, लेकिन हिदायत फिर भी नहीं मिलनी। ठीक है, तो तकवा चाहिए, तकवा तकवा जमीर में वो एहसास चाहिए कि मैं हर काम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करने का शौक रखूं, और अल्लाह ताला के हुक्मों के अगेंस्ट जाने से मैं बचना चाहती हूं। जो मुत्तकी लोग होते हैं ना, मुत्तकीन किसकी जमा? मुत्तकी की। तो जो मुत्तकी लोग होते हैं ना, वो अल्लाह के अजामों से इतना डरते हैं कि वो इस डर की वजह से गुनाहों को छोड़ना चाहते हैं या छोड़ देते हैं। तो ये हुदन है लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकीन के लिए। अच्छा, एक और सवाल इसके अंदर, एक सवाल पैदा हो सकता है कि आप ये सोचें, दालिका का मैंने आपको तर्जमा लिखाया, वो तो ये तो हमारे सामने है किताब, तो वो क्यों कहा गया? इसकी दो रीजंस हैं, टू रीजंस लिख लें। इसम इशारा बईद क्यों, दैट होता है और दिस होता है ना, एक दैट है, दैट के लिए क्या है जालिका, और दिस के लिए क्या है हाजा, तो हाजा क्यों नहीं आया, जालिका क्यों आया, इसलिए क्योंकि ये जो दैट जो जब इसम इशारा बईद दूर की इशारा इस्तेमाल करते हैं ना जालिका, करीब की चीज के लिए, तो उसमें क्या होता है उसकी ताजीम के लिए ये किया जाता है, ये अरेबिक का रूल है उसकी ताजीम के। जैसे आप तुम की बजाय किसी को आप कहते हैं तो आप में क्या हो गया, अब वो तो हम ही अपनी उर्दू में समझते हैं ना कि आप ताजीम के लिए होता है, हम जब इज्जत ज्यादा किसी को देना चाहते हैं तो आप कह देते हैं। तो इसी तरह अरबिक में क्या है, दूर का इसम इशारा जब करीब की चीज के लिए लाएं तो किस लिए, ताजीम के लिए। और नंबर टू रीजन क्या है, वो किताब, वो एक्चुअली ये क्यों कहा गया वालिका, क्योंकि ये वो किताब की तरफ इशारा है, वो कौन सी, कुरान पाक का असल वर्जन कहाँ पे है, असल इसका जो वो है वो कहाँ है, असल किताब लौहे महफूज में है, बल हुआ कुरान मजीद, कहाँ पे, फी लौहे महफूज, लौहे महफूज पे है, हमने पढ़ा था ना ये कुरान मजीद लौहे महफूज में है, और लौहे महफूज को यहां थोड़ी है, वो दूर है वो तो, ठीक है। चले यहां तक, अब आप ऐसा करें तिलावत चलें आयत 5 तक इंशाल्लाह ताला, और आप लोग जरा जो मैंने आपको माने भी अभी बताए हैं इन आयात के भी, और जो आगे भी लफ्जी तर्जुमा बताया ना, आप देखें आपको कितना याद है और कितनी समझ आ रही है आपको बगैर अभी तफसीर के, तो उसके बाद तफसीर बताऊंगी तो तब देखिएगा कितनी समझ आती है, ठीक है।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون